السلام عليكم يا آل مدد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم: والعسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات على محمد وآل محمد. فرزندان ملت، اصغریا جا پاک جوان، تاں گڈ آیو مولا تاں کے توفیق دے پان کے جترو سدھاریندو جی سائیں. اچھا برادران، میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں. آپ ملت کے سرمایہ ہیں. ابھی آپ کے جد و جہد اور خود سنوارنے کا زمانہ ہے. آپ جتنا خود کو سنوار سکیں گے، بھلا بنا سکیں گے، اتنا قوم اور ملت کی اچھی رہبری کر سکیں گے. یہ فورم، یہ اصغریہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں جوانوں کو نورانی تعلیمات دینے کا پروگرام رکھتی ہے، اور انشاءاللہ جو یہ ایک انبیاء اور اولیاء کا پروگرام ہے، اس پروگرام کو آپ سمجھ کر اور آگے بڑھائیں گے اور ملت کی رہبری کریں گے. عنوان اس کنونشن کا فکر توحیدی ہے. بہرحال ہمارے پاس ہوتا یہ ہے کہ معاشرہ ہمارے معیار اور ویلیوز بناتا ہے. معاشرے میں آپ جہاں جیتے ہیں، جاگتے ہیں، یا ماحول میں پلتے بڑھتے ہیں، وہ آپ کی ذہنیت بناتا ہے. اور جو ذہنیتیں آپ کی بن جاتی ہیں معاشرے میں، پھر آپ ان کو اٹل سمجھتے ہیں، اور پھر شاید کوئی بہت زبردست کوئی کام ہو کہ وہ اٹل چیزیں جو آپ کے ذہن میں جائے گزین ہیں اور آپ کے ذہن میں گھر کر گئی ہیں، ان سے شاید کوئی ہٹ بھی سکے. بہرحال یہ ایک فکر توحیدی کا عنوان برادران نے دیا ہے، اور یہاں آپ کے لحاظ سے سامان کیا ہے آپ کے لیے، آپ کے لیے اسباب مہیا کیے ہیں تاکہ یہ ایک فکر توحیدی پہ کچھ کام ہو سکے. مجھ کو بھی دعوت دی گئی ہے کہ میں آپ حضرات کی بارگاہ میں اس فکر کے لیے آپ کی خدمت میں کچھ عرائض پیش کروں. یہ آپ جان لیں، فکر اور نظریہ زندگی بناتا ہے. یعنی آپ کی جیسی فکر ہوئے گی ویسے ہی آپ کا نظریہ بھی وہی بنے گا، اور جب نظریہ وہ بنے گا تو پھر آپ کی زندگی بھی وہی بنے گی. یہ طے ہے. اب اس کو بھی پھر واضح کرنے کے لیے کوئی مغزماری کروں تو بہت وقت لگے گا, لیکن یہ طے ہے کہ چھوٹی سی مثال دے دوں. آپ میرے لیے نظریہ یہ رکھیں کہ بہت اچھا آدمی ہوں, تو آپ کا میرے ساتھ ملنا جلنا کوئی اور ہوگا, میرے ساتھ برتاؤ کچھ اور ہوگا آپ کا, شاید سلام کرنے کا انداز بھی کچھ اور ہو, کیونکہ میں اچھا سمجھا جاتا ہوں تو آپ کی فکر نے مجھے اچھا سمجھا. لیکن اگر آپ کی فکر یہ ہو کہ یہ برا آدمی ہے تو آپ مجھ سے ملنے جلنے سلام کرنے میں آپ کا برتاؤ اور ہوگا. تو یہ فکریں, برتاؤ, عمل اور زندگی میں فرق بننے کے لیے سبب بنتی ہے. تو اسی طرح سے اگر آپ کے پاس ایک فکر توحیدی ہے تو آپ کی زندگی کچھ اور ہوگی, لیکن اگر فکر توحیدی نہیں ہے تو آپ کی زندگی کچھ اور ہوگی. تو یہ ہے زندگی کا سوال ہے. تو یہاں دو انسان ہیں, ایک یہ ہے کہ جو فکر توحیدی پہ نظریے پہ معتقد ہے اور عقیدہ اس کا یہ ہے, دوسرا یہ وہ فرد ہے جس کا فکر توحید اور توحید کے متعلق کوئی نظریہ ہی نہیں ہے, حتیٰ ان کے سرے سے توحید کو مانتا بھی نہیں ہے. تو پھر اس قسم کے فرد کی زندگی کچھ اور ہوگی اور توحیدی انسان کی کچھ زندگی کچھ اور ہوگی. معمولی سی مثال بھی اگر آپ لے لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مثلا ایک بچہ ہے, گھر میں آتا ہے, دیکھتا ہے کہ یہاں ٹی وی سیٹ پڑا ہوا ہے, کوئی چیز پڑی ہوئی ہے, ادھر ادھر دیکھتا ہے کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا, تو اس نے اٹھا کے مثلا ٹی وی سیٹ کو خراب کیا, اس کے بٹن توڑ دیے. ماں باپ میں سے کوئی آیا دیکھا کہ بٹن ٹوٹا ہوا ہے, کس نے کیا ہے, بچے نے انکار کر دیا, جھوٹ میں بھی جان چھوٹ گئی. یہ بچہ ادھر ادھر دیکھتا ہے, دیکھتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں, تو کوئی دیکھنے والا نہیں تو کوئی حساب لینے والا بھی نہیں, جب کوئی حساب لینے والا نہیں تو میں اس ٹی وی سیٹ کو توڑ دوں گا تو مجھ سے پوچھے گا کون. لیکن یہی بچہ جب یہ دیکھتا ہے کہ ماں باپ دیکھ رہے ہیں تو یوں یوں کر کے ہاتھ بڑھاتا ہے, پھر ہاتھ پیچھے ڈال دیتا ہے کہ اس کو کچھ نہیں, کیونکہ دیکھنے والے کو اگر نظر میں رکھتا ہے تو اس کے ذہن میں ہے تو اس کی زندگی اور ہے. اور اگر کوئی دیکھنے والا حساب کتاب والا نہیں ہے تو زندگی کچھ اور ہے. یہ زندگیاں تبدیل ہوتی ہیں. باتیں بہت ہیں توحید پہ, تو توحید ایک بہت بڑا باب ہے, لیکن میں نے ایک آیت پڑھی ہے, بلکہ سورہ پڑھی ہے, میں اس کی تھوڑی سی معنی کر دوں اور تھوڑی سی باتیں آپ سے کر کے خدا حافظ کر لوں آپ سے. ویسے بہت بزرگان یہاں تشریف فرما ہے, وہ آپ سے خطاب بھی کر سکتے ہیں, آپ کی رہنمائی بھی کر سکتے ہیں. پروردگار عالم فرماتا ہے والعصر, عصر کہتے ہیں زمانے کو, والعصر یعنی قسم ہے زمانے کی. یہ ہم جو قسمیں کھاتے ہیں اس قسم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مثلاً ہم کہتے ہیں علی کی قسم, غازی کی قسم, خدا کی قسم, یہ قسمیں جو کھاتے ہیں ہم ہمارے پاس, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرے درمیان, میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میرے درمیان جو مقدس چیز ہے وہ حضرت علی علیہ السلام ہے, میں اس کی قسم کھا رہا ہوں. یعنی تم کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر میں وعدہ خلافی کروں سمجھو کہ میں نے علی کو جھٹلایا. कसम अब्बास की, यानी मैं ये बता रहा हूँ ये काम है, यानी मैं अगर ये काम न करूँ तो मैं अब हजरत अब्बास को झुठला रहा हूँ। कसम खुदा की, यानी मैं खुदा को बीच में डालता हूँ, अगर ये बात गलत है तो मैं इक्वल बन जाऊंगा इसके कि मैं खुदा को झुठला रहा हूँ। हमारी कसमें इस अंदाज की होती है, और कसम खाने का हमारा मतलब ये होता है कि जो दरमियान में जिसकी कसम खाई है हम उसको झुठला रहे हैं। लेकिन परवरदिगार आलम इसके उससे कोई मुकद्दस चीज़ नहीं है कि वो मुकद्दस अर्ज़ कर रहा हूँ अल्लाह से ज़्यादा कोई मुकद्दस हो जो अल्लाह इस तरह से कहे कि मैं अपनी मुकद्दसात को झुठलाऊँ, बल्कि खुदा किसी चीज़ की हैसियत को बता रहा है कि तुम लोग जो इस असर और ज़माने को बहुत बुरा कहते हो, और जब भी देखो तुम लोगों की फरियादें होती है कि ज़माने ने बिगाड़ दिया, ज़माने ने ख़राब किया, और दुनिया गंदी है, दुनिया ज़माना आपके पास फंसा हुआ है कि सब चीज़ें उसके खिलाफ बोलते हो, परवरदिगार आलम तुमको ये जतलाना चाहता है कि वल असर, तुम ये चीज़ जिसको गंदा समझ रहे हो वो ऐसी मेरी प्यारी चीज़ है कि मैं उसका कसम खा रहा हूँ। यानी ज़माने की कसम, मैं ज़माना प्यारी चीज़ है, खुदा ये कहता है कि मेरे लिए ज़माना प्यारी चीज़ है। ये ज़माना और मकान मखलूक है परवरदिगार आलम की। जब मखलूक किसी चीज़ की हो, मैं मामूला सा आदमी हूँ, अगर मैं थोड़ी सी तहरीर अच्छी लिख लूँ और मेरा ख़त अच्छा हो, राइटिंग अच्छी हो, तो आपको अगर कोई दिखाए आप उसकी तारीफ़ करें तो मैं खुश होता हूँ। मामूली हुनर की तारीफ़ हुनरमंद को पसंद है, तो परवरदिगार आलम का ये हुनर है कि उसने ज़माने को ईजाद किया। परवरदिगार आलम का हुनर ये है कि उसने अर्ज़ कर रहा हूँ मकान को, जगह को, इसको खल्क किया। तो ज़मान और मकान का खालिक परवरदिगार आलम है। जब खालिक है तो खालिक को अपनी मखलूक प्यारी है। तो एक तरीका ये है कि ज़माना मुकद्दस अच्छा क्यों है, इसलिए कि उसकी मखलूक है। जब उसकी मखलूक है तो उसको प्यारी है। हर हुनरमंद को अपना हुनर पसंद है, इसी तरह खुदा खालिक है ज़माने और मकान का, इस लिहाज से उसको। लेकिन किसी ख़ास ज़माने या किसी ख़ास जगह को हैसियत कब मिलती है? ज़माना हर ज़माना है। आज हफ्ते का दिन है, कल जुमेरा, कल इतवार का दिन होगा, परसों अर्ज़ कर रहा हूँ कि सोमवार होएगा, फिर मंगलवार होएगा, फिर बुधवार होएगा, इसी तरह से ज़माना तो होएगा। लेकिन एक दिन को मुकद्दस कैसे बनाएं? कहो कि इनमें से एक अच्छा दिन है, हम कहते हैं अब बुरी तारीखें, अच्छी तारीखें, इस तरह से आप लोग कहते हैं, अच्छी जगह है, बुरी जगह, ये मकान अच्छा, ये जगह। बार मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। तो इस ज़माना तो बराबर है, ज़मीन ज़मीन है, हर ज़मीन ज़मीन है, हर ज़माना ज़माना है, लेकिन इनमें फजीलतें उस वक्त और बढ़ जाती है, उस मकान में कोई ऐसी हस्ती हो या ऐसी शराफत महाब चीज़ हो जो उसको और हैसियत दे दे। ज़मीनें सब ज़मीन हैं, लेकिन करबला की ज़मीन कुछ और है। क्यों? इसलिए कि वहाँ मरकदे मुतहर हज़रत अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम। तो इस ज़मीन को हैसियत उस मकीन की वजह से हुई। खाने काबा है तो उस खाने काबा के होने की वजह से उस ज़मीन को फोकियत मिली दूसरी ज़मीनों से। तो मकान को मकीन की वजह से ज़्यादा फजीलतें मिलती हैं, और दूसरी हैसियत भी है जो मैं उनको छोड़ता हूँ फ़कत ये बात समझाने के लिए। اسی طرح سے کوئی زمانہ والعصر، پروردگار عالم نے کہا کہ مجھے زمانے کی قسم، تو یہ زمانہ تو زمانہ ہے، تو اس زمانے میں کون سی بھلائی آ گئی جو پروردگار عالم اس کو بہت اچھا کہہ رہا ہے کہ یہ زمانہ والعصر، کیا خصوصیت تھی اس میں؟ آپ میرے ساتھ ہیں پتہ نہیں یا نہیں، میری باتیں سن رہے یا نہیں، توجہ ہے نا میری طرف یا آپ لوگ سو گئے ہیں؟ نہیں بس ٹھیک ہے، بس یہ کہ مجھے معلوم ہو کہ آپ سن رہے ہیں. صلوات پڑھیں مطلب با آواز بلا. تو زمانے میں کیا خصوصیت ہے؟ تو اب یہاں سے میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ یہ لفظ عصر بھی عربی کا لفظ ہے اور لفظ زمانہ بھی عربی کا لفظ ہے، دونوں عربی کے لفظ ہیں. تو جس طرح ادیب لوگ ایک خاص لفظ کو چن کے اپنے شعر میں استعمال کرتے ہیں کسی خصوصیت کی وجہ سے، اسی وجہ سے یہ لفظ عصر زمانے کو چھوڑ کے لفظ عصر پروردگار عالم نے استعمال کیا ہے. لفظ عصر زمانے کے بھی معنی میں اور ایک دوسرا لغوی معنی ہے اس کا بمعنی نچوڑنے کے ہے. پتہ نہیں میری طرف آپ ہیں یا نہیں، انگور کا اگر جوس ہو تو اس کو کہتے ہیں عصیر العنبی، یہ عصر ہے انگور کا. انار کا ہو تو اس کو بھی عصیر کہیں گے، وہ بھی عصیر ہے. تو جتنا فروٹ کا جوس ہوتا ہے اس کو عصیر کہا جاتا ہے، عصر ہے کیونکہ نچوڑنے کی معنی میں ہے. آپ میری بات سن رہے ہیں؟ تو والعصر اس زمانے میں تم ہو، یعنی انسان ہو، اس تمہارے ہونے کی وجہ سے زمانہ اس لائق ہوتا ہے کہ پروردگار عالم اس کی قسم کھائے، تمہاری وجہ سے، تم انسان کی وجہ سے. تو تمہارے اس ہونے سے اس زمانے کو فضیلت ملتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ زمانہ تمہارے کام آتا ہے. کیوں بھائی کام، کیا کام آتا ہے؟ اس لیے کہ تم ایک کمال کی ہستی ہو. پتہ نہیں میری بات سن رہے ہو یا نہیں، تم کیا چیز ہو؟ کمال کی ہستی ہو. کمال کی ہستی اور کمال کی توانائیاں تم میں پوشیدہ ہیں، لیکن ان کمالات جو اللہ نے تم کو ودیعت کی ہیں، عنایت کی ہیں، ان کو اجاگر کرنا تمہارا کام ہے. یعنی تم ان کمالات کو اجاگر کرو تو بہت زبردست چیز ہو تم. اور زمانہ وہ چیز ہے جس میں تم ہو، اور تمہارے اس کمالات کے جوس یہ زمانہ نکالتا ہے. یعنی پروردگار عالم کہتا ہے کہ جس زمانے میں تم ہو یہ زمانہ تم کو نچوڑ کے تمہارے کمالات کا اظہار کی جگہ ہے، کمال کی جگہ ہے. اس زمانے میں تم آئے ہو، اس زمانے میں تمہارے کمالات کے اور فضائل کے اسباب مہیا ہوتے ہیں. اس وجہ سے خدا کہتا ہے والعصر، قسم ہے مجھے زمانے کی. صلوات پڑھے ایک مرتبہ با آواز بلند. اب اس قسم کھانے کے بعد پھر بات شروع کرتا ہے پروردگار عالم، یہ فرماتا ہے کہ والعصر، او بہت پیارے انسانوں، تم میں بہت کمال ہیں، ان کمالات کا اظہار تمہارا ہوگا اس زمانے میں، تمہارا جوس نکلے گا اس زمانے میں. پھر آگے بڑھ کے کہتا ہے ان الانسان لفی خسر، یہ اتنے بہت بڑے کمالات والی ہستی بہت مشکل میں ہے. کیا؟ یہ بہت بڑے کمالات کی ہستی تم ہو نا، تم
तुम हो ना कमालात की हस्ती, थोड़ा खुद को देखो। यही इंसान बहुत मुश्किल में है। इन्नल इंसान लफी खुसर, बड़ी मुश्किल में है। क्यों? इसलिए कि जिम्मेदारियां आएंगी तो मुश्किलात तो होंगी। जब जिम्मेदारी नहीं होगी तो कोई मुश्किल नहीं होगी। मुश्किलात होंगी जब जिम्मेदारियां होंगी। जब जिम्मेदारियां नहीं तो कोई इतनी मुश्किल ही नहीं। आप आए फिर जरा तोलना शुरू कर देते हैं। अल्लाह की मखलूकात में पहाड़ को देखें, पहाड़ पहाड़ बनने के लिए उसको कुछ नहीं करना पड़ता। इसलिए कि पहाड़ को अल्लाह ने पहाड़ बना ही दिया। अब तो कोई चीज ही नहीं है, पहाड़ को तो अल्लाह ने पहाड़ बना दिया। पहाड़ को पहाड़ बनने के लिए उसको कोई काम नहीं करना है। अच्छा, ये भी हो गया। दरख्त को दरख्त बनने के लिए कोई काम करना नहीं पड़ता, इसलिए कि उसके पास भी कोई मुश्किल नहीं है, कुछ करना नहीं है उसको। आ जाए जानवर के पास, गाय को गाय बनने के लिए कोई काम नहीं करना पड़ता। बकरी को बकरी बनने के लिए कोई काम नहीं करना पड़ता। ये चलो, ये तो आखिर बकरी बकरी है, ये बकरी ही मरेगी, इसको कुछ काम नहीं करना पड़ता। बकरी को बकरी बनने के लिए, गाय को गाय बनने के लिए। अच्छा, ये भी आ गए इधर। फिर आ गए, अर्ज कर रहा हूं कि हैवानों से बढ़ के अब आगे आ गए। आप मर्द हो, मर्द को मर्द बनने के लिए कुछ काम नहीं करना, वो अल्लाह ने बना दिया है। औरत को औरत बनने के लिए कुछ काम नहीं करना पड़ता, वो औरत अल्लाह ने ही बना दिया है। ये नुकास सब है, मुश्किलें में नहीं है। इसलिए कि औरत औरत है, उसको औरत बनने के लिए कुछ नहीं करना। मर्द मर्द है, उसको मर्द बनने के लिए कुछ नहीं करना। गाय गाय है, उसको गाय बनने के लिए कुछ नहीं करना, क्योंकि अल्लाह ने बना दिया ऑटोमेटिक। दरख्त दरख्त है, अल्लाह ने बना दिया। जो भी देखे मखलूक वो बन गई। लेकिन तुमको परवरदिगार आलम ने इंसान बनाया है, उस इंसान बनने के लिए तुमको जिद्दोजहद करनी पड़ेगी। यानी दूसरे लफ्जों में, इंसान के जो कमालात तुम में, उनको उजागर करके इंसान बनो या खुद को हैवान से ही पस्तर बनाओ, ये तुम्हारा काम है। इसलिए बड़ी मुश्किल में हो। यही नहीं, अल्लाह की एक ऐसी मखलूक तुम हो कि तुमको इंसान बनाना पड़ेगा, इंसान बिगाड़ना पड़ेगा, ये तुम्हारा काम है। इस वजह से तुम मुश्किल में हो। गाय चरेगी, बच्चे चलेगी, खाएगी मरेगी, कुछ नहीं, न हिसाब न किताब। दरख्त है, आया उगा हुआ गया, पहाड़ गया टूटा गया, न हिसाब न किताब। तुम इंसान हो, इंसान बनने के लिए तुमको काम करना है। अब यहां वल असर, इन्नल इंसान लफी खुसर, ये इंसान बड़ी मुश्किल में है। यहां है मसला इंसान का, ये इंसान का। तो फिर ये इंसान जब इस पोजीशन में है तो इसकी पनाहगाह भी कोई है या नहीं है? तो खुदा क्या फरमाता है, वल असर इन्नल इंसान लफी खुसर, ये इंसान बहुत खसारे और मुश्किलात में है, मगर इल्लल्लज़ीन आमनु, मगर वो लोग जो ईमान ले आए वो खसारे में नहीं है। पता नहीं मेरे साथ है या नहीं। इल्लल्लज़ीन आमनु, मगर वो लोग जो ईमान लाए। अभी आप मेरी बातें सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं? तो मैं एक सवाल करता हूं आप लोगों से कि आप लोग मोमिन हो या नहीं? जवाब नहीं दे रहे, लगता है नहीं हो। आप लोग मोमिन हो या नहीं हो? मोमिन हो। तो الذين آمنوا, لیکن جو لوگ ایمان لائے یعنی جو مومن بن گئے. تو آپ لوگ مومن ہو؟ ارے جواب تو دو نا. اے تو آپ مجھے بتائیں گے مومن کی معنی کیا ہے؟ کیا ہو آپ؟ یہ مسئلہ. یعنی ہم ہیں مومن لیکن ہمیں مومن ہونے کا پتہ ہی نہیں کہ مومن ہوتا کیا ہے. الا الذین آمنوا, مگر جو لوگ ایمان لائے. اچھا یہ ایمان, ایمان بنا ہے امن سے, امن. امن کیا ہوتا ہے؟ امن کیا ہوتا ہے؟ امن و امان ہے کہ ملک میں امن و امان نہیں, ملک میں امن و امان ہے, امنیت میں ہے؟ یہ کیا مطلب ہے اس کا کہ ہم لوگ امن میں ہیں, امن و امان میں ہیں؟ اس امن و امان کا کیا مطلب ہے کہ ہم امن و امان میں ہیں؟ یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں امن و امان ہے, اس کا مطلب یہ کہ میری عزت محفوظ ہے, میری جان محفوظ ہے, میرا مال محفوظ ہے, مجھ پر دشمن حملہ نہیں کر سکتا. بس امن کی جگہ وہ ہوتی ہے جہاں پر انسان کی جان, مال, عزت, آبرو محفوظ ہو, وہ جگہ امن کی ہوتی ہے. تو یہ الا الذین آمنوا, مگر وہ لوگ جو امان میں چلے جائیں, وہ لوگ جو امن کی جگہ پہ چلے جائیں, وہ جگہ جہاں پہ انسان کو دشمن سے محفوظ رہنا ہے, عزت و آبرو محفوظ ہو, جہاں جہاں جان محفوظ, عزت و آبرو محفوظ, او اس جگہ پہ چلا جائے. اب یہ جگہ کون سی ہے جہاں پہ انسان جائے اور پھر جانے والا جو اس میں جائے گا پھر وہ مومن بن جائے گا. مومن کی معنی کیا ہوگی؟ اب یہ مومن کی معنی کیا ہوگی؟ الا الذین آمنوا, مگر وہ لوگ جو مومن ہو جائیں یعنی امان کی جگہ پہ چلے جائیں, او ان کو کوئی پرواہ ہی نہیں. بس الا الذین آمنوا یعنی وہ لوگ کہاں چلے جائے؟ امان کی جگہ پہ چلے جائے, امنیت کی جگہ پہ جائے, پھر کیا ہو جائیں گے؟ پھر وہاں جا کے مومن بن جائیں گے. پتہ نہیں میرے ساتھ ہو یا نہیں. اچھا تو یہ امان میں جائے, امنیت میں جائے, یہ کیسے ہوئے گا؟ امام رضا علیہ السلام کی ایک حدیث ہے, وہ حدیث ہے, مشہور حدیث ہے, آپ لوگوں نے سنی ہوئی ہے کہ امام رضا علیہ السلام نیشاپور میں آئے تھے, تو وہاں کے مومنین نے, جب مولا وہاں سے جا رہے تھے تو مومنین نے خواہش کی کوئی کرم نوازی ہو, کوئی ہمیں کوئی تحفہ عنایت ہو. تو مولا وہاں اپنے آبا اجداد سے لے کے جبرائیل اور پیغمبر اور جبرائیل اور پھر خدا تک پہنچا کے قول خدا نقل کرتے ہیں. خدا یہ فرماتا ہے کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی, یہ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے. پتہ نہیں سمجھا یا نہیں سمجھا. کیا قلعہ؟ قلعہ حدود اربعہ جس کے معین ہوں, چار طرف سے گھیرے ہوئے ایک جگہ, ایسی جگہ جہاں پہ آپ جائیں یہ قلعہ ہے. تو کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی, یہ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے. किसका? अल्लाह का। बस इल्लल्लज़ीना आमनू, यानी वो लोग जो मेरे हिस्न में दाखिल हो जाएं, मेरे कले में दाखिल हो जाएं, वो मोमिन हो जाएंगे, अमान में आ जाएंगे। क्यों? इसलिए कि दखलू फी हिस्न ला इलाहा इल्लल्लाह, कि वो कला जो ला इलाहा इल्लल्लाह का उसमें वारिद हो गए। अब ये कला ला इलाहा इल्लल्लाह ये ऐसा कला है। अब यहां से हमारे पास अर्ज कर रहा हूं कि जज्बाती बातें बहुत सारी होती है और हमारे माशरे में फिर लफ्जों से मेंबर से खेले जाते हैं और फिर मज़ा भी लेते हैं। तो मैंने आपकी खिदमत में मोमिन यानी अमान में जाने वाला, ला इलाहा इल्लल्लाह के किले में दाखिल होने वाला, हिस्न ला इलाहा इल्लल्लाह में दाखिल होने वाला, इसको परवाह नहीं है। क्यों? इसलिए कि हिस्न इलाही, कलाए इलाही, हिस्न ला इलाहा इल्लल्लाह में ये वारिद हो चुका। ठीक, जब हिस्न ला इलाहा इल्लल्लाह में वारिद हो चुका तो ये इसको कोई परवाह ही नहीं है, तो ये हद बंदी है, तो तुम क्या हो गए? मोमिन। मैं एक कैसेट सुन रहा था तो उसमें कोई मुकर्रर तकरीर कर रहा था, क्योंकि हमारे पास रवाज ये है कि अल्लाह और आइम्मा को लड़ाओ और फिर अल्लाह और आइम्मा की लड़ाई हो, आइम्मा जीत जाए तो नारा हैदरी लगाते हैं हम, हमारा ये कानून है। अल्लाह ने कहा ये होगा, अली ने कहा ये होगा, अल्लाह ने कहा ये होगा, अली ने कहा ये होगा, अली ने कह दिया वो हो गया, अल्लाह ने जो कहा नहीं हुआ तो नारा हैदरी लग गया, यानी अली जीत गया। यानी दूसरे लफ्जों में यूं है कि हमने अल्लाह को और अली को दो पार्टियां बनाया हुआ है। यानी इस तरह से अब मोटी पार्टियां हैं हमारे पास, पीपी है, नून लीग है। अब जो नून लीग में है वो पीपी वालों से कहोगे कहोगे वो कहेंगे बहुत बदमाश है, और जो पीपी में है नून लीग वालों से पूछो वो कहेंगे ये बहुत बहुत बदमाश है। लेकिन यही पीपी वाला जब नून लीग में चाहेगा चला जाएगा तो बहुत अच्छा आदमी बन जाएगा, यही नून लीग वाला जब पीपी में चला जाएगा पीपी वालों के लिए फिर बहुत अच्छा बन जाएगा। तो हमने अल्लाह को और अली को, अल्लाह को और हुसैन को ऐसी पार्टियां बना रखा है। हम ख्याल करते हैं कि इन दोनों की लड़ाई है और अल्लाह से अगर अली जीत गया तो हम अली वाले हैं, हम जीत गए, अल्लाह को हमने हीच कर दिया तो अल्लाह तो कुछ रहा ही नहीं, अल्लाह के पास क्या रहा, नारा हैदरी लगा दिया हमने। तो हम इस किस्म की गंदी ज़हनियत के हैं। वहां मौला अली अलैहिस्सलाम, मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने खुदा का कौल ला कलिमतु ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी, वो अल्लाह का कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा कला है, उसमें दाखिल होना है, जो उसमें दाखिल होता है वो मोमिन है। अब लफ्ज मोमिन हमारे पास आया तो मैं खुद कैसे बोल रहा था, कह के अल्लाह है मोमिन, सुन रहा मेरी बात या नहीं? अल्लाह है मोमिन और अली है अमीरुल मोमिनीन, तो क्या करें अब? अल्लाह है मोमिन, अली अमीरुल मोमिनीन, ये नहीं दूसरे लफ्जों में अली अमीर अल्लाह का है, नारा हैदरी, ये जो नारा हैदरी आपने भी लगा दिया। दरअसल ये हमारे पास ये है कि जब इनका टकराव हो तो हम नारे हैदरी ऐसे लगाते हैं, वरना मोमिन अल्लाह का नाम है, अल्लाह का मोमिन नाम है, उसकी माना है अमान देने वाला, मोमिन इंसान है यानी अमान में जाने वाला। उसमें और इसमें कितना जमीन आसमान का फर्क है, और लफ्जों से खेल के आप नारे हैदरी लगाते हो। हालांकि ऐसा नहीं है कि अल्लाह एक पार्टी अलग है और हुसैन दूसरी पार्टी है, इत्तेफाक से अल्लाह की और हुसैन की एक हिज्ब है, एक पार्टी है। अगर हुसैन दर से भगाए तुमको तो अल्लाह भी कबूल नहीं करेगा, और अगर अल्लाह भगा दे तो हुसैन वाली भी कबूल करने वाले नहीं। एक हिस्ब है, एक पार्टी है, मेरे साथ है या नहीं? तो वला असरी इंसान बहुत मुश्किल में है। इल्लल्लज़ीन आमनु, जो हिस्ने इलाही अमान इलाही में आ जाए। अच्छा, जब अमान इलाही में कैसे आएंगे आप? पता नहीं मेरे साथ है या नहीं आप? नहीं, सलवात पढ़े बाबा से बुलंद तो सुभान अल्लाह से काम नहीं चलेगा। तो अमान खुदा, इल्लल्लज़ीन आमनु, यानी वो लोग जो अमान इलाही में आ जाए। अच्छा, अब अमान इलाही में कैसे आते हैं? हमारे पास बहस चलती है कि अकीदा पहले है या अमल। हसन के बाद हजरत यहां तक बहस को ले जाते हैं कि अकीदा काफी है या अमल जरूरी है। अरे, ये बहस को यहां तक ले जाते हैं कि अकीदा काफी है या अमल भी जरूरी है, या ये बहस यूं, पहले जरूरत अमल की है या अकीदे की? हमारे पास ये बहस चलती है एक इस अंदाज से कि पहल किसको है, अकीदा है अमल, दूसरा अकीदा काफी है या अमल की जरूरत है। तन्हा अकीदा, फिर ये अकीदा। अब अकीदा, आप पता नहीं मेरे साथ है या नहीं? अच्छा, ये ईमान, फिर ईमान इसमें अल्लाह के हिस्न में, अल्लाह किले में दाखिल होने के लिए, तो फिर अब यह ईमान, ईमान क्या है? अकीदा है। अब मेरे साथ जवाब नहीं दोगे मैं बोलना छोड़ दूंगा। ईमान अकीदा है ना? अकीदा है ना ईमान? अच्छा, अब अकीदा है, जवाब नहीं दे रहे हो तो मैं कैसे बोलूं अभी? ईमान अकीदा है या नहीं? ये अकीदा क्या होता है? ये अकीदा क्या होता है? ये लो, ये माइक है मेरे सामने है, मैं इसको यकीनन मानता हूं कि ये माइक है, तो अकीदा हो गया या नहीं? हो गया, जवाब तो दो ना। हो गया, तो फिर मैं मोमिन हो गया। ये नहीं, मैंने माइक को मान लिया और यकीन कर लिया कि ये माइक है, तो क्या मैं मोमिन हो गया? मैंने ये यकीन कर लिया कि ये छत है, तो ये मैंने यकीन कर लिया तो मैं मोमिन हो गया। मैंने देखा रोड पे गधा जा रहा था, गधे को देखा, यकीन आ गया कि ये गधा है, तो मैं गधे का मोमिन हो गया। यानी अकीदा बमाना यकीन आप कर लोगे। अगर इस तरह से आप ईमान और अकीदों की माना करोगे तो फिर आप ये गधे पे यकीन पे कह दो मोमिन, दीवार के यकीन पे कह दो मोमिन, ये माइक के यकीन पे कह दो मोमिन, तो फिर ईमान क्या होता है? इल्लल्लज़ीन आमनू, कह दो नहीं, मानना है। अच्छा, अल्लाह को मानने से मोमिन बन जाएंगे, तो जवाब तो दो यार। कहने बात बात ही नहीं करते आप। अल्लाह को मोमिन मानने से मोमिन हो जाएंगे? हो जाएंगे। तो इबलीस भी अल्लाह को मानता था, इबलीस भी अल्लाह को मानता था, कहे अल्लाह को मानता भी था, तब भी मोमिन नहीं है। बकाना मिनल काफिरीन कुरान में है, वो काफिर है। अल्लाह को मानता था, अल्लाह के वजूद को मानता था, तो अल्लाह को मानता था, अल्लाह के वजूद को मानता था, और उसके बाद अल्लाह को खालिक भी मानता था, ये सब चीजें मानने के बाद फिर भी मोमिन है? नहीं, जवाब क्यों नहीं दे रहे आप? फिर कैसे आप लोग कह देते एक नारे लगाने से मोमिन बन जाते हैं? ये अल्लाह को मान रहा है, अल्लाह को खालिक भी मान रहा है। अनजिरनी, मुझे मोहलत दे, मोहलत देने की कुव्वत उसके पास है, वो भी उससे मांग रहा है। ओ यो में मालूम तक एक हद तक भी हो, यानी कयामत को भी मान रहा है। तो अकीदा तो हो गया बहुत बड़ा, अल्लाह को भी मानता है, खालिक भी मानता है, कयामत को मानता है, मोहलत देने वाला भी उसको मानता है। पता नहीं मेरे साथ हो या नहीं, तो फिर क्या हो गया? फिर ये भी मोमिन नहीं है, मानने के बावजूद मोमिन नहीं है। खौफ अड़ांगो आ इश्क जो दरिया, ऐसा नहीं है कि तुम ऐसे ही खेल खेलो और कह दो बस हम मोमिन बन गए। ओ ये सब मानता है, अल्लाह को मानता है, खालिक मानता है, माद को मानता है, वक्त उससे लेता है, सब कुछ लेता है, लेकिन मोमिनों के लिस्ट में नहीं है, कुफार की लिस्ट में है। तो लगता है हर मानना ईमान में नहीं ले जाता, एक खास किस्म का मानना है जो ईमान में ले जाएगा। अब ये खास किस्म के मानने के लिए मैं बजाय इसके कि खुद तंग हूं आपको तंग कर वो नहीं करता, फकत इतना कहता हूं, किसी को मानना जिस तरह मानना, जैसा वो है ऐसा मानना, और उसमें रत्ती बराबर भी फर्क नहीं आना चाहिए। जैसा मानना चाहिए ऐसा माने, अगर उससे रत्ती बराबर भी फर्क किया तो नहीं माना। बस अल्लाह को जैसा वो है ऐसा मानना। क्या जैसा? अच्छा, मान लिया, मान लिया अली जैसा है ऐसा मान लिया। अच्छा जवाब दे मुझे आप, जवाब दे मुझे आप, जैसा है वैसा मान लिया। अच्छा अली कैसा है? बहुत सारी चीजें मैं नहीं बोलता, फकत एक हिस्से को बोलूंगा, अल्लाह के लिए भी अली के लिए और कुछ नहीं बोलूंगा। अल्लाह जैसा है ऐसा मानना। क्या जवाब दो भाई? अली जैसा है वैसा मानना, पैगंबर जैसा है ऐसा मानना। अच्छा, इस जैसे में मुता भी है या नहीं? मुता यानी जिसकी इताअत की जाए। आया अल्लाह को मुता यानी जिसकी इताअत की जाए भी मानते हो या नहीं? नहीं जवाब आ रहा, तो लगता मेरी बातें नहीं सुन रहे हो आप। अल्लाह को यह भी मानते हो, तमाम चीजें खालिक वगैरह, और साथ में यह के मुता भी मानते हो या नहीं? यानी मानते हो कि उसकी इताअत की जाए या नहीं? तो जवाब तो दो यार, मानते हो? मानते हो? अच्छा बस, अली को भी मुता मानते हो या नहीं? अब बोलो, जब अली को मुता मानते हो तो ईमान तुम्हारा तब होगा जब अली के साथ अहद करो कि हम तेरी इताअत करेंगे, अल्लाह के साथ अहद करो कि हम तेरी इताअत करेंगे, तो ये इताअत ईमान का हिस्सा बन जाएगा। तो अकीदा और अमल दोनों मिलके ईमान बनेगा। सलावत पढ़े बाबा से बुलंद। खाली खाली मानना मजाक है। मैं अली को कमाल का मानता हूं, लेकिन मुता नहीं मानता, अली को नहीं मानते। अल्लाह को ला इंसअलता हूं मन खलक समावात वल अर्ज। ऐ पैगंबर, तुम बुत परस्तों से जाके पूछो इस जमीन और आसमान को किसने खल किया है। लयकूलुनल्लाह, ये सब मिलके कहेंगे अल्लाह ने खल किया। तो ये मुशरिक कुफार भी अल्लाह को मान रहे हैं, खालिक मान रहे हैं। लेकिन नुक्ता जो ईमान का हिस्सा है वो क्या है कि मानो, मानने में मुता भी शामिल है। अल्लाह को मुता भी मानता हूं। शैतान को चोट कहां से लगी? मुता नहीं मान रहा था, खालिक मान रहा था, तमाम कुव्वतें मान रहा था, लेकिन मुता नहीं। नहीं कहा सही था कि नहीं, ये नहीं 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 नहीं, नहीं ये काम मुझसे नहीं होएगा। मुता नहीं हो, यानी इतना तुम्हारी इताअत हो कि यहां तक, यहां भी तेरी इताअत को नहीं 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 नहीं, कुछ मैं भी हूं। यहां गड़बड़ हुआ। तो इबलीस ने ये, अगर हम महज अकीदे को बुनियाद बनाए और मुता अकीदे में लाए नहीं, अकीदा ही नहीं, यानी दूसरे लफ्जों में ईमान अल्लाह को ऐसा मानना और साथ में अहद करना कि या अल्लाह तू ही मेरा मुता है, तेरे अलावा मैं किसी की इताअत नहीं करूंगा। ओ अब हदीस पढ़ो, कलिमतु ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी, ये कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह, सलवात तो पढ़ो यार। ये कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह तुम्हारे जहन में आ जाए कि मुता अल्लाह है, नो कोई और, कोई नहीं है। जब इस किले में दाखिल हो जाओगे, इल्लल्लज़ीना आमनू में भी आ जाओगे, मन दखला हिस्नी में भी आ जाओगे, और फिर ये नहीं कहोगे कि ईमान अकीदा है अमल नहीं। बस क्या वजूद में आ जाएगा, फिर वजूद भी आ जाएगा, अपने वजूद पे हाकमियत अल्लाह की। जवाब नहीं दे रहा मुझे, तुम्हारे वजूद का हाकमियत किस पे आ जाएगी? यानी मुता मैं पूरा हूं या आधा? पूरा दिमाग, सोच अल्लाह की, आंखें, पूरा वजूद। अब खुद खुद तजुर्बा कर लो कि तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी आंखें, तुम्हारा कान, तुम्हारा दिल, तुम्हारा हाथ, तुम्हारी हाथ, तुम्हारे हाथ, तुम्हारे पांव, इन सब पे अल्लाह कितना मुसल्लत है, उतने ही मोमिन हो, और जितना मुसल्लत नहीं उतने मोमिन नहीं। यह है फिक्र तौहीदी। मैं थक गया हूं, आप भी दुआएं मांग रहे हो कि जान छोड़ू। बिस्मिल्लाह भी जोरी कहते हैं। यहां पे आके आप एक नए जहन, नई इजाद, एक नया इंसान बन जाते हो। काम करते हो, शुरू काम शुरू करते हो, क्या कहते हो? अब देखो काम शुरू से ही बिस्मिल्लाह। जहां भी देखो अल्लाह, जहां भी देखो अल्लाह, जहां देखो अल्लाह, तवज्जो है नहीं, जलवे अल्लाह के तुमको नजर आएंगे, तुम्हारी आंखें ऐसी बन जाएगी, वजूद ऐसा बन जाएगा, सोच तुम्हारी और हो जाएगी, जिंदगी तुम्हारी और हो जाएगी। तो ईमान अकीदा और अमल के मजमुआ, और इस अहद का, इस किले में दाखिल होना कि अल्लाह के तमाम کمال صفات کو ماننے کے بعد اسی ہستی سے عہد کیا ہے کہ تو مطاع بھی ہے, میں اطاعت تیری کروں گا, کسی اور کی نہیں. یہ ہے توحیدی. اب امام صادق علیہ السلام کا قول پڑھوں, اس کی معنی کر دوں. پتہ نہیں میں بات آپ تک پہنچا سکا یا نہیں پہنچا سکا. نہیں اگر آپ سے پھر پوچھا جائے تو پھر آپ بتا بھی سکو گے؟ صحیح بتاؤ یار. اچھا اب بس معلوم ہوا کہ ایمان فقط یہ جو عقیدہ, یہ عقیدہ ہی ہے. عقیدے کے ساتھ ایک عہد ہے, ایک عقد ہے, ایک عہد ہے اللہ کے ساتھ کہ یہ قلعہ الہی میں زندگی کروں گا اور نہیں. اور جب قلعہ الہی میں عہد ہے تو اطاعت ہے, تو مطاع ہے. اب یہاں امام صادق علیہ السلام وہ انہی باتوں پہ فرماتے ہیں ملعونن 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 من قال الایمان قول بلا عمل. تین مرتبہ کہا ہے. لانتی ہے وہ, لانتی ہے وہ, لانتی ہے وہ جس نے کہا ایمان عقیدہ ہے بغیر عمل کے, عقل کے خلاف ہے. بس الا الذین آمنوا, حسن الہی میں داخل ہونا, وجود محول کرنا, حاکمیت دینا اللہ کو, یہ ہے فکر توحیدی. پتہ نہیں میں آپ تک اپنی بات بتا سکا یا نہیں. باتیں تو بہت ہیں, بہرحال میں تو کچھ تو باتیں کی آپ کو. مولا آپ کو توفیق دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.